अभिमन्यु ने इशिका और वसुधा से वादा किया था कि वो अगले 24 घंटों में राजवंश विला से हर उस शख्स को बाहर निकाल फेंकेगा जो उनके लिए खतरा हो सकता है। नकुल के जाने के बाद अब प्रशांत और उर्वशी ही बचे थे। जेल में जिस तरह से अभिमन्यु ने नकुल को धमकी दी थी, उसके बाद उर्वशी खुद बखुद उसके रास्ते से हट गई थी, तो वहीं अब प्रशांत बचा था, जिसे हटाना इतना आसान नहीं था। अभिमन्यु ने उसका रास्ता भी ढूंढ लिया था। उसने वसुधा जी और दिग्विजय राजवंश को राजवंश एम्पायर में बुलाया और प्रशांत को उनकी हर प्रॉपर्टी से बेदखल हरवा दिया था। वहां वकीलों के साथ एक बोर्ड मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में अभिमन्यु ने प्रशांत और नकुल के कारनामों के बारे में बताया, जिसके बाद हर कोई उनके फैसले से सहमत था। उनके लीगल एडवाइजर मिस्टर आडवाणी ने कहा, आपने सही वक्त पर बिल्कुल सही फैसला लिया है मिस्टर राजवंश। कोर्ट में ये मामला आने पर हमारे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर स्टे लग सकता है। पहले ही उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सोचा है तुमने कि नकुल और प्रशांत के शेयर्स किसके हिस्से में जाएंगे? वसुधा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा। ये भी एक जरूरी मामला था। अगर नकुल के शेयर्स उर्वशी को और प्रशांत के शेयर्स पार्थ के नाम किए जाते तो आगे जाकर पार्थ ना सही लेकिन उर्वशी उनके मामले में टांग अड़ा सकती थी। वैसे भी उसे एक मौका चाहिए था अपनी पोजिशन स्ट्रांग करने का। अभिमन्यु ने एक गहरी सांस ली और कहा, दादी ने अपने सारे शेयर्स मेरे नाम कर दिए थे। मैं चाहता हूँ डैड और भैया के शेयर्स दादी और छोटे दादू आपके पास जाएं। अगर आप इम्पोर्टेंट डिसीजन होल्डर रहेंगे तो कल को मेरे लिए ही सही रहेगा। हाँ ठीक है, फिर ऐसा कर लेते हैं, दिग्विजय ने जवाब दिया। उन्हें भी यही ठीक लगा। वैसे भी वो अभिमन्यु के अलावा कभी किसी और को सपोर्ट नहीं करने वाले थे, इसलिए उन्हें शेयर्स लेने में कोई दिक्कत नहीं थी। मिस्टर आडवाणी ने सारी प्रक्रिया को लीगली फॉलो करना शुरू कर दिया था। अभिमन्यु ने इस बारे में उनसे पहले ही डिस्कस कर लिया था, इस वजह से मिस्टर आडवाणी ने पेपर्स पहले ही तैयार करवा दिए थे। उन सबके साइन हो जाने के बाद मिस्टर आडवाणी ने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी कोर्ट जाकर इन्हें सबमिट कर देता हूँ। लीगली अब प्रशांत राजवंश का उस घर पर कोई हक नहीं है। आप चाहो तो उन्हें अपने घर से भी निकाल सकते हो। बिल्कुल, और मुझे इसी मोमेंट का इंतजार था, अभिमन्यु ने विक्ट्री स्माइल के साथ कहा। उसने जो वादा किया था वो कर दिखाया था। पूरा काम हो जाने के बाद मीटिंग खत्म हो गई थी। अब वहां अभिमन्यु, पृथ्वी, वसुधा और दिग्विजय ही बचे हुए थे। वसुधा का चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका खुद का बेटा ऐसा निकलेगा। अभिमन्यु ने उनका हाथ सहलाया और आंखों ही आंखों में सब ठीक होने का आश्वासन दिया। वसुधा ने उसे गले लगाकर भावुक होकर कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला था। मेरा बेटा तो किसी लायक नहीं निकला, लेकिन जिसे बेटे की तरह रखा उसने कभी किसी चीज की कमी नहीं दी। अभिमन्यु ने उन्हें सहलाते हुए प्यार से धीमी आवाज में कहा, और मेरे लिए आप मेरे मॉम और डैड सब कुछ हो। अपना दिल छोटा मत कीजिए, वो यही डिजर्व करते थे। मैं अब तक उनकी मनमानियां को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन उन्होंने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वसुधा ने हां में सिर हिलाया और अभिमन्यु से अलग हो गई। अभिमन्यु आगे बोला, मैंने जो टाइम दिया था वो खत्म होने में काफी वक्त बचा है, लेकिन फिर भी अपना वादा निभाने का वक्त आ गया है। चलिए घर चलते हैं, हक से अपने घर में रहेंगे। अभिमन्यु फिर उनके साथ पूरी सिक्योरिटी को लेकर घर पहुंच गया। प्रशांत उस वक्त उर्वशी के साथ शाम की हवा का आनंद लेते हुए चाय पी रहे थे। उर्वशी ने अब तक उन्हें अभिमन्यु और नकुल की मुलाकात के बारे में बताया नहीं था। वो बस इस बारे में बताने जा ही रही थी कि अभिमन्यु वहां पूरी सिक्योरिटी और अपने परिवार के लोगों के साथ पहुंच चुका था। आज पार्थ भी राजवंश विला आया हुआ था, क्योंकि उसे इशिका से अपने प्रोजेक्ट की अपडेट लेनी थी। एक साथ कई गाड़ियों के आने का शोर सुनकर इशिका और पार्थ बाहर आए। इतनी सिक्योरिटी और अभिमन्यु को देखकर उन्हें कुछ डाउट हुआ, तो वो दोनों उनके पास पहुंचे। अभिमन्यु को इतनी सिक्योरिटी के साथ देखकर प्रशांत अपनी जगह से खड़े हुए और सिर हिलाकर कहा, अच्छा तो तुम अपने गुंडों के साथ मुझे मारने के लिए आए हो? बोलते हुए उन्होंने वसुधा और दिग्विजय की तरफ देखकर आगे कहा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप इसके हर गलत काम में इसका साथ देंगे। मुझे किसी मामले में कम मत समझना। मैं अभी पुलिस को बुलाकर तुम्हारी इस गुंडागर्दी को बंद करता हूँ। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें पहले ही कॉल कर दिया गया है। आप ऐसा काम कीजिए, अपना लॉयर बुला लीजिए, अभिमन्यु ने भौहें उठाकर कहा। पुलिस और लॉयर का नाम सुनते ही उर्वशी सकते में आ गई थी। वो समझ गई थी कि अभिमन्यु ने जरूर कोई सख्त कदम उठाया है। वो कुछ कहती उससे पहले प्रशांत बोला, हाँ तो मैं डरता थोड़ी ना हूँ, मैंने भी लॉयर को आने के लिए कहा था। अब हिसाब किताब हो जाना चाहिए। लीगली मैं हम दोनों के बीच सारे बाप बेटे के रिश्ते तोड़ने जा रहा हूँ। फिर देखता हूँ तुम ये राजवंश सरनेम के किस हक से लगाते हो। उनकी ये बेवकूफ़ी देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। वो उसी अंदाज में बोला, हमारे बीच तो कभी बाप बेटे का रिश्ता था ही नहीं मिस्टर राजवंश। शायद आप भूल रहे हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मेरे मॉम डैड दादी और दादू थे। स्कूल एडमिशन कराते टाइम आपने मेरे साथ जाने से मना कर दिया था। प्रशांत की नज़रें एक पल के लिए झुक गई थी। उन्होंने कभी अभिमन्यु को अपना बेटा नहीं समझा। प्रशांत हड़बड़ाया और बोला, हाँ तो अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? सीधे सीधे बोलो। ठीक है, सीधे सीधे सुन लीजिए। राजवंश एम्पायर में आपके नाम के सारे शेयर्स अब छोटे दादू और दादी के पास वापस आ गए हैं, अभिमन्यु ने बताया। बताया तो प्रशांत के चेहरे का रंग उड़ गया था। उर्वशी अलग से परेशान हो गई थी। वो समझ गई थी कि जब प्रशांत के साथ ये सब हुआ है तो अभिमन्यु ने नकुल को भी नहीं बख्शा होगा। उर्वशी ने अभिमन्यु के पास आकर नरमी से कहा, किस परिवार में लड़ाई झगड़े नहीं होते अभिमन्यु, इस तरह रिश्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तुम मेरे लिए बिल्कुल मेरे नक्श की तरह हो और भाभियां माँ समान होती है। उर्वशी अपनी मीठी बातों से अभिमन्यु को बहलाने की कोशिश कर रही थी। बात करते हुए उसने अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया था। अभिमन्यु ने तुरंत उसका हाथ झटक कर कहा, भाभियां माँ समान होती हैं लेकिन आप नहीं हो। झूठा प्यार मत लुटाइए, आपके पति के नाम भी अब कुछ नहीं रहा, तो ये बटरिंग करने का अब कोई फायदा नहीं है। पास राजवंश विला में प्रशांत से भी बदला लेने के लिए आया था, लेकिन उसे कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। उसका सारा काम तो खुद ही हो रहा था। जिस तरह से अभिमन्यु ने प्रशांत से सब कुछ छीन दिया था, ये देखकर पार्थ के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट उभर आई थी। अभिमन्यु से कुछ भी कहने का फायदा नहीं था। ये सोचकर प्रशांत वसुधा के पास आया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं आपका बेटा हूँ, आप इस लड़के की बातों में आकर मुझे बेदखल कर रही हैं, मुझसे रिश्ता तोड़ रही हैं। तो मत भूलिए ये किसका बेटा है। वो औरत अपने बेटे तक को छोड़कर चली गई, ये भी आपको छोड़कर चला जाएगा। ये बस यहाँ सारे शेयर्स अपने नाम करने तक रुका हुआ है। वसुधा ने प्रशांत को दूर धकेल दिया था। वो गुस्से में बोली, बस बहुत हो गया, मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। अब तक मुझे लगता रहा कि तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, अपने स्वार्थ के लिए तुमने लोगों की जिंदगी लेना शुरू कर दिया। इससे पहले कि पुलिस आई, निकल जाओ यहाँ से। ना तो राजवंश एम्पायर पर और ना ही राजवंश विला पर अब तुम्हारा कोई हक रहा है। लेकिन माँ मैं अभी इस उम्र में कहाँ जाऊंगा, प्रशांत ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ लेकिन मेरे सामने मत आना, वसुधा ने काफी बेरुखी से कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। प्रशांत ने वसुधा से इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। वो दिग्विजय की तरफ मुड़कर बोला, चाचू आप कुछ कहिए माँ को, वो तो आपकी हर बात सुनती है।
मैं चाहता हूँ कि अब वो मेरी बात ना सुने, इसी में सबकी भलाई है। तुमने भाभी पर हाथ उठाने की कोशिश की, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी तुम्हारा साथ दिया, ये सोचकर कि तुम अपनी हरकतें बदल लोगे, लेकिन नहीं, तुम तो दिन ब दिन और गिरते जा रहे हो। दिग्विजय ने गुस्से में जवाब दिया और वो भी वसुधा के पीछे जाने लगे। प्रशांत की अब एक आखिरी उम्मीद अभिमन्यु बचा हुआ था। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर प्लीडिंग वॉइस में कहा, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, कम से कम छत तो मत छीनो, मैं कहाँ जाऊँगा? वैसे मैंने आपके रहने का एक अच्छा इंतजाम किया है, अभिमन्यु ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। कोई उसकी बातों का मतलब समझे या ना समझे, लेकिन उर्वशी को सब समझ आ रहा था। ये जल्दी से अभिमन्यु के पास आकर बोली, मैंने अपने गुस्से में तुम्हें काफ़ी कुछ कह दिया था, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ठीक है, हम उस शर्त को भूल जाते हैं, और मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ नकुल को बाहर निकाल लो, अब बहुत देर हो चुकी है मिसेज राजवंश। आप चाहें तो राजवंश टेरिटरी में रह सकती हैं, लेकिन मेन विला में रहने की इजाज़त आपको नहीं होगी, आपको आउट हाउस में शिफ्ट होना पड़ेगा, अभिमन्यु बोला। क्या? उर्वशी ने चौंकते हुए कहा। वो गुस्से में तेज में बोली, अब क्या मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहूंगी? मैं इस घर की बहू हूँ। अभिमन्यु ने उर्वशी के हाथ में कुछ पेपर्स देते हुए कहा, उन्हें भी हर तरीके से बेदखल कर दिया गया है, आपका रिश्ता उनके साथ था, जब तक पुलिस आती है तब तक पैकिंग कर सकती हैं। दूसरा, आप राजवंश बिला से एक छोटा सा तिनका भी उठाकर नहीं लेकर जा सकती हैं, बस कपड़े जाएंगे। पुलिस? लेकिन पुलिस यहाँ क्यों आ रही है? प्रशांत ने चौंकते हुए कहा। उसका पता आपको जल्द ही लग जाएगा, अभिमन्यु बोला। अभिमन्यु के बात खत्म करते ही पुलिस वहाँ पहुँच चुकी थी। वो प्रशांत की तरफ आई और बोली, आपको हैप्पी एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट में स्लम एरिया के लोगों को इल्लीगल तरीके से वहाँ से हटाने और उनको गायब करवाने के लिए अरेस्ट किया जाता है, मिस्टर प्रशांत राजवंश। प्रशांत का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु उसके साथ कुछ ऐसा करेगा। उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखा, लेकिन अभिमन्यु ने अपनी नज़रें फेर ली थी। प्रशांत के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा था, पुलिस उसे लेकर जा रही थी। पार्थ को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा अभिमन्यु राजवंश, तुमसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है, और आज तुमने ये साबित कर दिया। तुमने अपने दुश्मनों को तो इतनी आसानी से हटा दिया, लेकिन मुझे हटाना आसान नहीं होगा। चलो अच्छा है, साइड कैरेक्टर्स हट गए, अब मेन कैरेक्टर्स की वॉर की बारी है। पार्थ को प्रशांत से चिढ़ थी, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। प्रशांत के वहां से जाने के बाद उर्वशी को भी मजबूरी में अपने सामान के साथ वहां से नक्श के अपार्टमेंट में जाना पड़ा। वहीं पार्थ भी वहां से हट गया था। अब इशिका और अभिमन्यु ही वहीं पर बचे थे। इशिका के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी, अब उसे किसी का डर नहीं था। अभिमन्यु उसके पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। वो उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तो बताइए मिसेज राजवंश, क्या अब भी आपको ये घर छोड़कर जाना है? कभी भी नहीं, इशिका ने मुस्कुरा कर जवाब दिया और धीरे से अभिमन्यु को थैंक्स कहा। इशिका को अभिमन्यु से ढेर सारी बातें करनी थी, लेकिन अभिमन्यु उससे अलग हुआ और बोला, थोड़ा टाइम दो, अभी कुछ और भी काम निपटाना बाकी है, तब तक ऐसा करो कि मेन विला में सेटल होने की तैयारी कर लो। मेन विल पर अभिमन्यु का ही हक था, लेकिन प्रशांत और नकुल के वहां होते हुए वो उस घर में रहने के बजाय वसुधा के साथ रहता था। अब वो हक से अपने परिवार के साथ उस घर में रहने के लिए जा रहा था। इशिका को वहीं पर छोड़कर अभिमन्यु वापस ऑफिस निकल गया। उसने पृथ्वी को इशिका की मदद के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। अभिमन्यु राजवंश एम्पायर पहुंचा। तब तक ऑफिस के सारे लोग लगभग जा चुके थे, बस बाहर गेट पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे। अभिमन्यु अब बेफिक्र था, उसकी सारी मुसीबतें उसके रास्ते से हट चुकी थी। वो बेपरवाही से अंदर जा रहा था, इस बात से अनजान के अंदर मालविका चाकू के साथ उसका इंतजार कर रही थी।